सूरत में प्रातःकाल के श्रीमद् भागवत के प्रवचन में श्रीमद् भागवत महापुराण के छठा स्कंद सत्संग का विषय है। छठे स्कंद में 19 अध्याय हैं और छठे स्कंद का जो विषय है वो है भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। पोषण का अर्थ होता है रक्षा करना, रोग से बचाना और उनकी समृद्धि और पुष्टि के लिए व्यवस्था करना। तो भगवान अपने भक्तों का जो रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं, वो भागवत का एक विषय है। और छठे स्कंद में भगवान अपने नाम के द्वारा 3 अध्यायों में भक्तों की रक्षण और पोषण करते हैं। अजामिल के प्रसंग में केवल नाम उच्चारण से भक्त कितना भी पापी हो तो पाप से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान अपने रूप के द्वारा 14 अध्यायों में रक्षण करते हैं अपने भक्तों का रूप के माध्यम से। तो रूप के अंतर्गत शब्द भी आता है, रूप के अंतर्गत दक्ष प्रजापति जिसको भगवान शंकर ने गर्दन काट दिया और बकरे का सर लग गया, उसने भगवान की तपस्या करके भगवान का दर्शन किया रूप का और ब्रह्म शंकर जी के अपराध से मुक्त हो गया, फिर दोबारा दक्ष बन गया। तो रूप से भगवान कैसे रक्षण करते हैं अपने भक्तों का। शब्द नाद से नारायण कवच के द्वारा इंद्र की रक्षा किया। तो ये सब भगवान अपने भक्तों की रक्षा जो करते हैं उसका इसमें वर्णन है। तो भगवान जो सृष्टि करते हैं तो उसकी रक्षा भी करते हैं। तो इस प्रसंग के अंदर छठे स्कंद के 11वें अध्याय में वृतासुर, वृत का मतलब ढकना, असुर का मतलब जो असुरी प्रवृत्ति का हो, ये वृतासुर इंद्र से युद्ध करते हुए 4 श्लोक बोले उसने, उसको वृतासुर चतुर श्लोकी बोलते हैं। वो भक्ति का बहुत सुंदर दर्शन है उसमें और उसके शब्द ऐसे हैं। वृतासुर कह रहा है, असुर है, कह रहा है, अहम हरे रतव पादैक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूयः। मैं कौन हूं, वृतासुर कहता है, मैं कौन हूं जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दास हैं उनके दासों का मैं दास हूं। ये वृतासुर कह रहा है, एक बहुत बड़ा असुर, कि मैं भगवान के भक्तों के दासों का दास हूं, चरणों के दासों का दास हूं। मनः स्मृतेषु पते रघुणास्ते, और मेरा मन हमेशा भगवान का गुणगान करता रहे और मेरी वाणी भगवान का गुणगान करे, कर्ण मेरा भगवान की कथा सुने और मैं जो काम करूं वो भगवान की सेवा हो। ये श्लोक जब बोला, ये वो बेटा हमारा और ये राजा रमन के गोस्वामी हमारे साथ आए हुए हैं, तो बैठिए पुष्पांगी। तो क्यों आप ऐसी भक्ति क्यों करना चाहते हैं अगर कोई पूछे, तो वृतासुर आगे कहता है, ननाक पृष्टम न च प्रामेष्टयम्, मुझे कोई न संसार के इसका सुख चाहिए, न स्वर्ग आदि चाहिए, न शर्म और इस धरती का, न जो स्वर्ग का सुख चाहिए, मुझे कोई योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है, जैसे चेतना महाप्रभु का न जन्म न जन्म, तो मुझे ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो कैसे तुम प्रार्थना करेंगे? बहुत सुंदर इन चार श्लोकों के ऊपर ये हमारे राधा रमन के गोस्वामी जी ये पुष्पांग ने अहमदाबाद में बात की थी, बड़े सुंदर ये चार श्लोक हैं। तो कैसे जब ये चार श्लोकों का वर्णन सुना तो परीक्षित महाराज बड़े चिंतित आतुर होकर पूछने लगे, ये तो असुर था, इस असुर के हृदय में ऐसी उत्तम भक्ति कैसे आई? असुर ऐसे भक्ति के श्लोक कहे, ये तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे संभव हुआ? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक तो ये साधारण असुर है नहीं, ये तो यज्ञ कुंड के तुष्टा के यज्ञ कुंड से आहुति से उत्पन्न हुआ था, ये असुर कुल से नहीं आया है, किसी असुर का बेटा नहीं है, ये तुष्टा का बेटा है, तुष्टा प्रजापति तुष्टा आदित्य है, 12 आदित्य में एक तुष्टा है, ये तो देवताओं के संतान है, और यज्ञ कुंड में आहुति डाली थी तुष्टा ने अपने बेटे विश्वरूप के इंद्र के द्वारा मारे जाने के ऊपर इंद्र का वध करने के लिए, तो ये असुर उसमें कुंड से पैदा हुआ था, जैसे द्रौपदी कोई किसी महाराज द्रौपदी की बेटी नहीं थी, कुंड से उत्पन्न हुई थी, वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, तो ये तो साधारण असुर नहीं था, तो कौन था? परीक्षित महाराज ने पूछा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये बहुत बड़े राजा चित्रकेतु थे, ये तो बहुत बड़े राजा थे चित्रकेतु, और उस राजा बड़ा किस बात में था? बोला उनको बहुत बड़े महान भागवतों का संग हुआ था, उसके घर में अंगिरा ऋषि आए थे, ब्रह्मा के पुत्र हैं अंगिरा। साधु किसी के घर में जाता है तो भगवान का भक्ति का उपदेश देने के लिए जाता है, लेकिन लोग साधु जब घर में आता है तो संसार का सुख मांगते हैं कि हमारे घर में बच्चा हो जाए, हमारा दुकान ठीक लगे। साधु जाता है सत्संग देने के लिए, लेकिन लोग मांगते हैं संसार, लेकिन साधु इतने दयालु होते हैं कि इस बार इसको ये दे दिया जाएगा तो इसकी विश्वास बढ़ जाएगा, अगली बार भक्ति भी करेगा, तो साधु आशीर्वाद दे देते हैं। अंगिरा ने चित्रकेतु को आशीर्वाद दिया, उसको पुत्र नहीं था, पुत्र हुआ, पुत्र का मृत्यु भी हो गया, दुखी होकर रो रहा है, मारा किसने पुत्र को? चित्रकेतु की अन्य रानियों ने, कि जिस रानी ने जन्म दिया है बेटे को वो तो हो गई अब महारानी, हमको कोई पूछेगा नहीं, उन्होंने विष देके उस बेटे को ही मार दिया। अब तो घर में हाहाकार मचा, सब रो रहे हैं, उस रोने धोने के बीच में फिर अंगिरा नारद जी को साथ लेकर आए, और उपदेश जब देने लगे अंगिरा जी, तो चित्रकेतु कहते हैं, आप हैं कौन? विभु हैं, कौन से ऋषि हैं? आप तो बहुत महान उपदेश दे रहे हैं। तब अंगिरा ने कहा, मैं वही हूं जो पहले आपके घर आया था, तब आपने मेरे से पुत्र मांगा था, और मैंने कहा कि आपको सुख तो देगा उसके साथ दुख भी देगा, ये हर्ष शोक है, हर्ष तो होगा लेकिन शोक भी साथ में होगा। और उस वक्त नारद ने अपने योग शक्ति से उस मृतक बालक की आत्मा को बुलाया और शरीर में प्रवेश कराया। ये विज्ञान था, मरे हुए बेटे की आत्मा को नारद ने बुलाया, कहा कि हे आत्मा, आप इस शरीर में प्रवेश हो जाओ, आपके माता पिता बंधु बहुत दुखी हो रहे हैं। और वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश किया, और फिर वो जीव आत्मा बोलने लगा और चित्रकेतु को कहने लगा, तुम मेरे पिता कब से हो? कई बार मैं तेरा पिता हुआ हूं, कभी कौन सी जूनी में जाते हैं, कभी कौन सी जूनी में जाते हैं। इसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत अच्छे उदाहरण लिखे हैं, हम अपना बेटा किसी को मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी बेटा अपना शत्रु होता है, वो घर में बेटा बन के आता है और अपना शत्रुता का बदला लेके वापस चला जाता है। हम समझते हैं कि हमारा बेटा है, हमारे को सुख देने आया है, लेकिन देके दुख जाता है। हम अपने इन्हीं शास्त्र के अनुभव पे, वो चित्रकेतु का बेटा ऐसे कह रहा था, जैसे आपकी जेब में अभी 100 का नोट है तो आप समझते हैं ये मेरा है, ऐसे समझते हैं ना? आपकी जेब में 100 का नोट है, आप क्या समझते हैं मेरा है, ऐसे समझते हैं ना? और बाजार में जाके कोई चीज खरीद लेंगे तो जिसके पास जिसको नोट देंगे वो अपना समझेगा कि नहीं समझेगा? थोड़ी देर के बाद वो समझेगा ये 100 का नोट मेरा है, और फिर वो कहीं और समर चीज लेगा। ऐसे कितने जेब बदलता है 100 का नोट, जिसकी जेब में होता है वो समझता है मेरा है, लेकिन 100 के नोट के ऊपर क्या लिखा है, भारत सरकार का है, ये लिखा है कि नहीं। हम सब उसको अपना मानते हैं, लेकिन है किसका, मतलब भारत सरकार का। ऐसे जीव आत्मा किसी शरीर में आता है तो हम अपना बेटा पोता मानते हैं, लेकिन है तो वो भगवान का अंश, हमारा तो है नहीं। ये जीव आत्मा ने जब उपदेश दिया तो चित्रकेतु का मोह नाश हो गया। उस वक्त नारद ने चित्रकेतु को एक मंत्र दिया। क्या कौन सा मंत्र दिया? भगवान बलराम जी, भगवान शंकरषण की उपासना का मंत्र दिया। और जो उपदेश दिया है कि ये साधना करना आप चित्रकेतु, नारद जी ने, वो अब वर्णन चल रहा है इसमें कि आप। और शंकरषण का उपदेश क्यों दिया? थोड़ा सा राजा है तो अहंकार बच जाता है, शेष अहंकार के अधिपति देव शंकरषण है, उनकी उपासना से अहंकार समाप्त हो जाता है। तो नारद जी ने जो सुंदर मंत्र दिया है, बहुत सुंदर मंत्र है, नमो वासुदेवाय, शंकरषणाय, और फिर उस भगवान की स्तुति कैसे करनी है वो वर्णन है यहाँ। ये 7 दिन में केवल चित्रकेतु ने वर्णन स्तुति की, 7 दिन में उसको विद्याधर का पद मिला, साक्षात भगवान बलराम जी का दर्शन हुआ, और फिर वो चित्रकेतु विद्याधर बनने के बाद भगवान शंकर और पार्वती को साथ बैठे हुए, पार्वती को देख के हंसा, और उस वजह से पार्वती ने श्राप दिया, इसलिए वो वीरता शुरू हुआ। ऐसे नारद जी इस कथा बताते हैं। तो ये जो श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चित्रकेतु जो प्रार्थना कर रहा है, ये बोल रहा है, इस वक्त बोल रहा है नारद जी शिक्षा देते हुए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकृष्णाय। ये मंत्र दिया, ये कौन दे रहा है मंत्र? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये नारद जी मंत्र दे रहे हैं, इसका मतलब ये शब्द नारद जी के हैं। तो अभी हम जो हम सुनने जा रहे हैं श्लोक, ये नारद जी ने बोला है, और इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, नारद ने ऐसे बताया कि पूजा करो। उस पूजा के अंतर्गत उस भगवान शंकरषण की महिमा का ये श्लोक है जो हम अब पढ़ेंगे। यस्मिन् इदं यतश्चेदं तिष्ठत्याप्येति जायते निर्मणेषु इव निर्जातः तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं तिष्ठत्यापयेति जायते मृणमयेष्व इव मृज जाते तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यापयेति जायते मृण्यमयेष्व इव मृज्जाते तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। आवृत्ति कीजिए, लिख दो कोई भी। यस्मिन् इदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्यमयेष्व इव मृजाते। यस्मिन् इदं यतश्चेदं तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। इस श्लोक का अर्थ ये है कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, और जब समाप्त होता है तो वापस भगवान में समा जाता है। कैसे? जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी से बनता है और टूट जाने के बाद वापस मिट्टी हो जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। कैसे? यस्मिन इदम यतश्चेदम। यस्मिन बोलिए, यस्मिन जिसमें, इदम ये जो सारा जगत दिख रहा है, यतः जिससे, च और इदम ये जगत, तिष्ठति स्थित है, अपयेति और जब प्रलय होती है, जायते और फिर ये जब प्रकट होता है, मृत्यमयेषु जैसे मिट्टी सी बने हुई चीज, एव वैसे ही मृत जाति ही मिट्टी से उत्पन्न होती है, जैसे मटका मिट्टी का बना हुआ है, तस्मै इसलिए उसके ऊपर, ते हे भगवान, ब्रह्मणे परम पुरुष, नमः मैं नमस्कार करता हूं। इसका मतलब भगवान संकर्षण को नमस्कार करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, सृष्टि कौन बनाता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, किससे होती है, किस में जाके लय होती है। भगवान श्री कृष्ण से पहला विस्तार होता है संकर्षण, संकर्षण और फिर पांच विस्तार यहां होते हैं। उन पांच विस्तारों में तीन पुरुष हैं, पुरुष अवतार, कारण दक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई, और एक है बलराम जी और एक है अनंत। ये सृष्टि सारी इनके द्वारा होती है, श्री कृष्ण सृष्टि नहीं करते हैं। सृष्टि कहां से होती है? सृष्टि संकर्षण के विस्तार से होती है, उसका आधार भी भगवान शेष के रूप में उस सृष्टि को धारण करते हैं। और प्रलय कौन करता है? वही संकर्षण, जिसका लोक नीचे लिखा है कि ये सात लोक नीचे है पृथ्वी के ऊपर, रसातल तलातल जो भी, और उससे भी नीचे 30,000 योजन, और वहां भगवान संकर्षण है, गर्भोदक्ष सागर है गर्भोदक्ष, वहां भगवान शंकर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। प्रलय के समय उनके मुख से आग निकलती है और फिर ये सब तपने लगता है, फिर सब कुछ जब समा जाता है, कहां जाता है सब, सारी सृष्टि वापस भगवान गर्भोदा की दक्षाई विष्णु के उदर में चली जाती है। तो निकलती कहां से? भगवान से निकलती है। वापस जाती कहां है? भगवान में जाती है। तो ये भगवान की प्रार्थना है कि आपसे जगत की उत्पत्ति होती है, आप में जगत स्थित है और फिर आप में जगत विलीन हो जाता है। आप में जगत स्थित है, इसका अर्थ है कि भगवान जगत का पालन करते हैं भगवान विष्णु के रूप में। उदाहरण फिर देते हैं कैसे, जैसे मिट्टी से मटका बनता है, मटका फूट जाता है तो वापस मिट्टी हो जाता है, ऐसे संसार भगवान से निकला है, जब समाप्त हो जाएगा तब भगवान में जाएगा, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो ये भगवान की जो, इसको कहते हैं भगवान की जो सृष्टि करने का, इसको भगवान है सृष्टि करता जो है, उत्पत्ति करता है, उसके इस गुण को प्रणाम कर रहे हैं। जन्मादि अस्य यत, ये श्लोक ऐसा है जैसे भागवत का पहला श्लोक है, जन्मादि अस्य यत, जिससे सारी सृष्टि निकलती है उसको हम प्रणाम करते हैं। तो ये नारद जी के द्वारा शिक्षा दी जा रही है महाराज चित्रकेतु को कि भगवान संकर्षण की उपासना करो, इस मंत्र के द्वारा उसको प्रणाम करो। तो इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, पृथ्वी से बने हुए जो भी बर्तन होते हैं टूट जाने के बाद वो सब पृथ्वी में मिल जाते हैं, ऐसे ही ये पूरा जगत भगवान परम ब्रह्म से निकला है, उसी में रहता है और जब प्रलय होती है तो वापस उसी में समा जाता है। इसलिए भगवान परम पुरुष उस ब्रह्म का भी आदि कारण है, इसलिए हमको भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री प्रभुपाद जी भावार्थ में केवल दो लाइनें लिखते हैं, परम पुरुष भगवान इस भौतिक जगत का कारण है। कारण है का मतलब ये कहां से जगत आया, किसने पैदा किया? लोग तो ये कहते हैं कि ये जगत अपने आप पैदा हो गया, एक विस्फोट हुआ और विस्फोट हुआ उसमें से जगत पैदा हो गया। तो भाई विस्फोट होने से नुकसान होता है ना, भाई कहीं बम यहाँ रख दिया जाए तो उसमें से कोई जगत पैदा होगा, जो बना होगा वही फूट जाएगा ना, तो विस्फोट में जगत पैदा कैसे हो गया। एक दिल्ली के भक्तों ने ट्रायल नाम का एक ड्रामा बनाया है, देखा है आपने कभी वहां से वो वीसीडी मंगा के भक्तों को दिखाना। उसमें ट्रायल ये है कि एक भक्त बन जाता है तो उसका कोर्ट में केस जाता है कि भगवान है ही नहीं तो ये है, भगवान को मानता क्यों है। तो दो वकील हैं कोर्ट में केस लड़ते हैं, एक कहता है भगवान है, एक कहता है भगवान नहीं है। सृष्टि कैसे हुई? अरे भाई विस्फोट से सृष्टि हो गई, वकील कहता है नास्तिक। तो जो अर्जुन नाम का वकील जो भगवान है ये बात समझा रहा है, वो एक दिन अपनी बैग से ऐसे बम निकालता है तो सारे डरने लगते हैं, हे जो कोई आतंकवादी है बम लेकर आया है। बोले ठहरो, आपको डर क्यों लग रहा है बम से? बोला ये विस्फोट होगा तो सब मर जाएंगे। तो बोला यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर विस्फोट से धरती बनी होती तो सब मर जाते, बन कैसे जाते? तो फिर कोर्ट जजमेंट देती है कि भगवान एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत सुंदर मतलब प्रचार की दृष्टि से ये नए साल के पंजाबी बाग मंदिर में हम नए साल के 31 को रात को ये दिखा रहे थे भक्तों को, हम थोड़ी देर वहां बैठे थे। तो जो प्रचार में आपको जो कहना है कि भक्त प्रति कहां से निकली है, कारण कौन है इसका, तो वो उसके ऊपर बहुत सुंदर कभी दिल्ली से उसको बनाएंगे ना, वो ये आपके नौजवान प्रचारकों को दिखाने के लिए अच्छी है। वो भक्त हैं, वो वकील का रोल करते हैं और कोर्ट में ये सिद्ध करते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। और उसमें वो एक भक्त है जो बहुत अच्छा कलाकार है भारत अपने मंदिर दिल्ली का, वो कृष्ण का रोल करता है और उस वकील को बार बार आके दिखाता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम चिंता मत करो। और फिर वो भगवद गीता का श्लोक पढ़ के उसके अंतर्गत कहता है कि ऐसे बड़ी प्रसन्नता मुझे हो रही, भगवान ने मेरे को मेरे भक्त की रक्षा करता है, नमे भक्त प्रणश्यति, ये श्लोक के साथ वो फिर समाप्त होता है पूरा ट्रायल कि भगवान है कि नहीं है। तो इस पूरे जगत का कारण कौन है, ये जगत कहां से निकला? नास्तिक लोग कभी कहते हैं इसका कोई कारण नहीं है, कैसे इसके पीछे कोई हो सकता है? तो बच्चा तो भगवान को माने, जैसे नए नौजवान लड़के होते हैं भक्त बन जाते हैं यहां आते हैं, लेकिन माता पिता को लगता है कि ये भक्त बन जाते हैं इसलिए कहते हैं कहां कोई भगवान भगवान नहीं, किसी ने दुनिया नहीं बनाई है, तुम चलो यहां से। बच्चा बड़ा बुद्धिमान था, वापस आके घर में एक बहुत अच्छा फोटो लगा दिया। तो बाप ने बोला कहां से आया, किसने बनाया? बोला नहीं तो अपने आप यहां आ गया। तो ये अपने आप यहां कैसे आएगा? नहीं अपने आप बन गया हो गया, ऐसे नहीं बन सकता है, किसी ने बनाया होगा। नहीं नहीं कोई किसी ने नहीं बनाया, नहीं नहीं बनाया है। तो बोले तेरा ये फोटो किसी ने बनाया, फिर इसे दुनिया किसी ने बनाया, अपने आप बन गई है। तुम कहते हो दुनिया अपने आप बन गई है, एक फोटो भी अपने आप नहीं बन सकता है, कोई चीज अपने आप नहीं बन सकती, उसके पीछे बनाने वाने का तो विचार करना ही पड़ता है ना, तो फिर इस जगत को किसने बनाया है? तो ये श्लोक में ये बात नारद कह रहे हैं। कहां से नारद ये सुन के आया? अपने गुरु पिताजी ब्रह्मा से सुन के आया, और ब्रह्मा ने अपने आंखों से उस भगवान को देखा जो जगत को बनाता है। इसलिए ब्रह्मा ने ये कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर सर्व कारण कारणम, सब कारणों का आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। आदि कारण वो है, इसका मतलब और भी निमित्त कारण बहुत है, ब्रह्मा निमित्त कारण है। तो जगत की जो कोई चीज बनती है उसके दो कारण होते हैं, एक कारण को कहते हैं उपादान कारण, एक को कहते हैं निमित्त कारण। जैसे मटका मिट्टी का यहां उदाहरण है ना, तो मिट्टी के मटके का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। ये टेबल है, इस टेबल का उपादान कारण क्या है? लकड़ी। ये लकड़ी से बना हुआ टेबल है ना, इसको लकड़ी कहूं तो कोई गलत तो नहीं, ये लकड़ी है टेबल है। मैं कहता हूं लकड़ी, आप कहते हैं टेबल है, लकड़ी है और टेबल भी है, लेकिन इसका निर्माण कारण कौन करता है? उपादान कारण तो लकड़ी है, लेकिन निमित्त कारण कौन है? इसको टेबल किसने बना दिया लकड़ी से? कारपेंटर ने। तो कारपेंटर इसका निमित्त कारण है और लकड़ी इसका उपादान कारण है। ऐसे इस जगत का उपादान कारण भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु है, वहां से ये जगत निकलता है। उनके नाभि में जब जगत की उत्पत्ति होती है तो भगवान का पेट जिसमें 14 लोक समा जाते हैं वो ब्लू हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, वहां से एक डांडी निकलती है, और उसमें 14 लोक होते हैं, ऊपर कमल बनता है उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो उनके नाभि कमल से निकलता है, 14 लोक निकलते हैं, सत्य लोक से लेकर पाताल लोक तक, उसके अंदर पृथ्वी भी है, ये भगवान के नाभि कमल से निकलती है। तो कहां से मिला, क्या चीज, क्या हम बने के, ये जगत किस चीज का बना हुआ है? दो चीजों का बना हुआ है, एक तो 24 तत्व प्रकृति के, 24 तत्व प्रकृति के, उसको वो कहां से आते हैं, महत्त्व से, प्रधान महत्त्व 24 तत्व, महत्त्व सुना है शब्द महत्त्व, उससे पहले प्रधान, भगवान विष्णु से पहले प्रधान निकलता है, प्रधान महत्त्व हो जाता है। प्रधान और महत्त्व में क्या अंतर है, जैसे आपके गोदान के अंदर फेस्टिवल का सारा सामान रखा हुआ है, उसको 12 महीना काम नहीं पड़ता है तो उसको प्रधान कहते हैं, जब फेस्टिवल आ जाता है बाहर निकाल के झाड़ के साफ करके रखते हैं तो उसको महत्त्व कहते हैं, वही चीज है जो पहले गोदान में पड़ी थी तो प्रधान है भगवान में समय, और जब बाहर निकाल के जगत बनाना होता है तब उसको महत्त्व कहते हैं, उस महत्त्व के ऊपर भगवान की जब दृष्टि पड़ती है तो उसमें हलचल होती है, जड़ तो अपने आप में नहीं हिल सकता है, भगवान की दृष्टि से जो उसमें हलचल होती है उसके बाद उसमें जीवात्माओं का प्रवेश होता है। कौन करता है ये, दूसरा कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है, ब्रह्मा, ब्रह्मा निमित्त कारण है जगत का, जगत ब्रह्मा जी ने कब बनाया, जब भगवान विष्णु ने 24 तत्व दिए, जीव दिए और उसके कर्म दिए, सारे जीवों के कर्मों का चिट्ठा जीव और 24 तत्व जब भगवान विष्णु ने दिए तब उनको आपस में मिलाकर ब्रह्मा जी ने ये जगत बनाया। तो जो सृष्टि भगवान विष्णु करते हैं उसको सर्ग बोलते हैं, सर्ग, जो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं उसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग का मतलब विशेष सर्ग, विशेष सर्ग का मतलब अलग अलग शक्लें बनाना, 84 लाख माल तो 84 लाख शक्लों में वही है ना, जितने भी जीव दिख रहे हैं उसके एक तो आत्मा है और एक शरीर है, और शरीर उन्हीं 24 चीजों का बना हुआ है, नाम कुछ भी हो, सोने के कितने भी आभूषण बने हुए लेकिन बने हुए तो सोने के हैं। तो ये दृष्टिकोण यहां भगवान के इस जन्मादि अस्य के अंतर्गत जिससे पूरी सृष्टि होती है, तो प्रभुपाद जी यहां एक ही लाइन लिखी है कि इस भौतिक जगत के कारण परम पुरुष भव, सुप्रीम लॉर्ड द काज ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, वही इसकी उत्पत्ति का कारण है, ही मेंटेन इट आफ्टर क्रिएशन। अब कौन इस जगत को अभी अब कौन चला रहा है, अरे कृष्णा ये तो दूसरी है, वो कहां गई, ये दूसरी आ गई, बच्चा आप पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं इस संसार के अंदर, ये आ गया ना बच्चा, जिसने पैदा किया इसको पालन कौन करता है, उसका बाप माँ करेगा और कोई करेगा, तो ऐसे जगत को ही भगवान पैदा करते हैं तो फिर उसका पालन भी तो भगवान ही करते हैं, वो दूसरी बात है, आजकल लोग बच्चा पैदा करके बाहर फेंक देते हैं, ऐसे भगवान मूर्ख नहीं है कि जगत को पैदा करके फेंक नहीं देता, अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करता है, करता है कि नहीं करता है जगत का पालन पोषण, आप बताओ जरा भगवान। भगवान जगत का पालन पोषण करता है कि नहीं करता है, कैसे करता है, आपको जीने के लिए जो भी आवश्यकता है वो भगवान देता है, कोई आदमी नहीं देता है, कोई सरकार नहीं देती है, सांस लेने के लिए हवा का प्रबंध किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, भगवान ने किया है, किया है कि नहीं किया है, खारे समुद्र के पानी को मीठा करके बादल के द्वारा बरसा के सबको नदियों में बहा के पिलाने का प्रबंध भगवान ने किया है, किसी गवर्नमेंट ने किया है क्या, नहीं कर सकती है गवर्नमेंट ये प्रबंध, तो पालन पोषण आज भी भगवान ही कर रहा है। एक इंच अगर सूर्य नीचे आ जाए तो सब जल जाएंगे, क्यों नहीं नीचे आता है, उसको अपने स्तर के ऊपर कौन बना के रखा है, केवल 2 इंच समुद्र अपने किनारे से बाहर निकलने का प्रयास करे तो सब डूब जाएगा, वो अपने किनारे से 2 इंच बाहर क्यों नहीं आता है, किसने उसको मर्यादा में रखा है, भगवान ने रखा है, भगवान सब चीजों को संयम में रख के पालन कर रहे हैं। गामावेश भूतानि धारयामि अहम् ओजसा, मैं सभी ग्रहों में नक्षत्रों में मैं प्रवेश करके उनको अपनी जगह में धारण करके रखा हुआ है, और वैसे भी हमारे शरीर के अंदर भी भगवान आत्मा के साथ बैठे हुए हैं, वही हमको याद दिला रहे हैं कि हमको क्या करना है। हमें जो अगले पुराने जन्मों के अंतर्गत जो कर्म करने थे वो हमको तो याद नहीं है, परमात्मा के रूप में जो भगवान बैठे हैं वो हमको याद दिलाते हैं इसके बाद तुम्हें ये करना है क्योंकि ये तुम्हारे कर्म के अनुसार है। उपदृष्टा अनुमंता भरता भोगता महेश्वर, उपदृष्टा देखता है हमको ऊपर बैठ के क्या हम कर रहे हैं, अनुमंता अनुमति देता है किसकी, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमको करना है। भरता हमारा भरण पोषण करता है, भरता का मतलब पति को भरता क्यों बोलते हैं, पति को बोलते हैं ना भरता, पति को क्या बोलते हैं भरता, क्यों बोलते हैं भरता, क्योंकि पालन पोषण करता है। भोगता भगवान ही भोगता है, हम भोग्य हैं, तो भरता भोगता महेश्वर सारे ईश्वरों का आदि ईश्वर है भगवान, तो भगवान ही सृष्टि का कारण है, भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। और जब ये सृष्टि प्रलय को प्राप्त होती है तो फिर सब कुछ भगवान के अंदर जाके समा जाता है, भगवान से निकलता है, भगवान ही उसको पालन पोषण करते हैं और भगवान में वो फिर समा जाती है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ये नारद जी सिखा रहे हैं। तो भगवान उत्पत्ति का पालन का और प्रलय के बाद संहार के बाद सबको अपने में समा लेते हैं, इसके तीनों के कारण है। ऐसे भगवान को हम प्रार्थना करते हैं और वो भगवान संकर्षण की प्रार्थना है, भगवान संकर्षण की प्रार्थना है जो भगवान का पहला विस्तार है श्री कृष्ण का। और संकर्षण से इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए तीनों विष्णु तीनों रूप में पुरुष अवतार तीन विष्णु होते हैं, वो संकर्षण से होते हैं। ऐसे चेतना चरित में लिखा है कि सृष्टि के हेतु पांच रूपों में संकर्षण प्रविष्ट हो जाता है, तीन विष्णु के रूप और एक शेष, और एक रूप से भगवान की सेवा करने के लिए जब भगवान आते हैं तो बलराम जी हो जाते हैं। तो ये पांच रूपों में सृष्टि के लिए, और इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षा विष्णु, परमात्मा की जरूरत नहीं है वैकुंठ में परमात्मा को जरूरत नहीं है, ये तो भौतिक सृष्टि के लिए इनकी जरूरत है, ये तो सृष्टि करनी है इसलिए भगवान के ये अवतार होते हैं, इसको पुरुष अवतार बोलते हैं। अवतार का मतलब ऊपर से नीचे उतर के आए हैं, लेकिन इनका अस्तित्व वैकुंठ में होने की आवश्यकता नहीं, वहां कोई ऐसी सृष्टि नहीं होती है, कर्मों वाली सृष्टि वहां नहीं होती। तो इस जगत के लिए भगवान इस जगत की उत्पत्ति के कारण, तो ये इस श्लोक में नारद जी ये संकेत दे रहे हैं। दो ही लाइनों का है, दूसरे श्लोक का भी दो तीन लाइनों का है, लेकिन इसके बाद 24 में को थोड़ा सा भावार्थ है, 23 का भावार्थ है ही नहीं। फिर भी भगवान की स्तुति चल रही है, तो इसको बोलते हैं नारद के द्वारा भगवान संकर्षण की स्तुति। और इस स्तुति से 7 दिन में भगवान संकर्षण प्रकट होके महाराज चित्रकेतु को दर्शन दिया और उनको विद्याधर बना दिया। तो हमको आज इस श्लोक से ये सिर्फ समझना है कि इस जगत के उत्पत्ति के कारण भगवान संकर्षण है, वही इसका पालन करते हैं विष्णु के रूप में, और जब ये जगत का प्रलय हो जाता है तो सब वापस भगवान में समा जाता है। एक प्रलय होती है ब्रह्मा जी की रात के समय की, तब ब्रह्मा जी जिंदा रहते हैं, तब ऊपर के लोक भी रह जाते हैं, सत्य लोक तप लोक जन लोक, इनकी प्रलय नहीं होती है, केवल ब्रह्मा सोते हैं तो जो ब्रह्मा जिसकी उत्पत्ति करता है उनकी प्रलय हो जाती है, इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ये नैम से होती है, ब्रह्मा जी रात होती है, जैसे हमारा दिन में काम करते हैं रात को सो जाते हैं, रात को हमारी भी प्रलय हो जाती है, हमारा सारा जगत जो है रात को खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, दुकान मकान विचार परिवार सब रात को तो हम भूल जाते हैं, रात को सो गए सब कुछ भूल गए, हमारी प्रलय सुबह उठ गए तो फिर दोबारा हमारा जगत चालू हो गया, वो फिर दोबारा काम शुरू हो गया, ऐसे ही ब्रह्मा जी के दिन में हम सब जागते हैं और ब्रह्मा जी की रात में हम सब सो जाते हैं, वो नैमित्तिक प्रलय है। ये तो होती रहती है। इस छोटी प्रलय तो एक इसी को कहते हैं, रात को सोना भी प्रलय है, हमारा सोना भी एक प्रलय है हमारे लिए। हमारे को कुछ याद होता है सोते हुए? कुछ भी याद नहीं होता है। एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, तब सब कुछ भगवान विष्णु के अंदर समा जाता है, जब तक दोबारा सृष्टि होती है। और एक विशेष प्रलय जिसको कहते हैं निरोध जिसको कहते हैं भागवत में, वो होता है असल में जब आदमी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, वापस भगवत धाम चला जाए, तब वो संसार के सब बंधनों का परित्याग करके चला जाता है। तो हमारे लिए वो प्रलय उत्तम है जिसमें भौतिक जगत के सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होकर वापस भगवत धाम चले जाए। वो भी प्रलय है। किस चीज की प्रलय है? भौतिक सारे कारणों से अपने को मुक्त करना है। निरोध का अर्थ होता है अपने स्वरूप में स्थित होना, असली प्रलय वो है, मोक्ष उसको बोलते हैं। तो यहां इन दो लाइन में ये वर्णन है नारद के द्वारा चित्रकेतु को भगवान बलराम जी की, और फिर बलराम जी प्रकट होते हैं उसका वर्णन आएगा। नीलांबर है, नीले वस्त्र पहने हुए हैं, और वो प्रकट होने के बाद उपदेश देंगे, और जब वो उपदेश देंगे तब कहेंगे कि आपको जो अंगिरा और नारद ने बताया है वही काम करो। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान वही शिक्षा देते हैं जो उनके भक्त देते हैं, और भक्त वही शिक्षा देते हैं जो उसके भगवान देते हैं। ये परंपरा में चलता है, कोई अपना नया मत नहीं चलाता है। ऐसे शंकरचंद ने नहीं कहा पहले जो उन्होंने कहा वो खत्म हो गया, आज से मैं जो नया कहता हूं ये शुरू करो, ऐसे नहीं कहते। ये भी बहुत बड़ा विशेष इस अध्याय के अंदर सीखने को मिलता है। भगवान उसका अनुमोदन करते हैं, भगवान उस चीज का जो है वो क्या कहते हैं एक शब्द, ही अप्रूव द टीचिंग ऑफ द सेंटली पर्सन हु आर इन परंपरा। नारद जी जैसे भक्त के कहे हुई वाणी को भगवान समर्थन करते हैं उसका, अपनी नहीं, ये वो ठीक नहीं। नारद ने कहा था मैं भगवान आया हूं, अब मैं जो कहता हूं ये मान लो, ऐसे नहीं कहते। जो नारद ने कहा है वो सत्य है, उसी का पालन करो और तेरा उसमें कल्याण होगा। और उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि उसकी शिक्षा से तुमको मैं मिल गया हूं, इसका मतलब वो ठीक शिक्षा है, तब मैं मिल गया हूं, नहीं तो कैसे मिलता। तो अब मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूं कि आप बहुत जल्दी वापस मेरे पास आ जाएंगे। तो ये चित्रकेतु की शिक्षा और 3-4 श्लोकों में शिक्षा चलेगी नारद के द्वारा, फिर चित्रकेतु को भगवान के दर्शन होंगे, चित्रकेतु भगवान की प्रार्थना करेगा, भगवान चित्रकेतु को आशीर्वाद देंगे, और फिर चित्रकेतु को वृत्तासुर कैसे बना ये एक और अध्याय में वर्णन आएगा। ऐसे 14 अध्यायों का ये भगवान का पोषण अपने भक्तों का है, उसका वर्णन है। फिर 2 अध्यायों में पूजा के द्वारा भगवान पोषण करते हैं, पूजा के द्वारा, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, पूजा के द्वारा, 2 अध्याय आखिर में है। 3, 14 और 2, 3 और 14, 17 और 2, 19 अध्याय में 6 स्कंद का वर्णन है। हरे कृष्ण, दर्शन करने का समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो बाद में पूछ लेना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।